श्री राधा कृष्णपादां स्वर्णललिता श्री विशाखामितांश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दृढ़ता पूर्वक कैसे योग अभ्यास में लगना चाहिए, जिसके द्वारा वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे, मन को कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो श्लोक क्रमांक 25, शनै शनौ परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तम्भन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। सो शनै शनै धीरे धीरे और क्रमशः उपरमय बुद्ध्या धृति गृहीतया दृढ़ बुद्धि के साथ साथ तो समाधि में स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार मन आत्मा में ही स्थिर रखना चाहिए। आत्मस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। सो न किंचित अपि चिंतयेत, तो अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, या उसका अर्थ है अन्य इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए। किंचित मतलब एक भी नहीं होना चाहिए, अन्याभिलाषित शून्यम ऐसे कहते हैं ना। तो एक भी अन्य वासनाएं नहीं होना चाहिए या तो इच्छाएं नहीं होना चाहिए, उसको किंचित अपि चिंतयेत कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, आप 99.99% शुद्ध हो गए, 0.01% भी शुद्ध नहीं है तो वापस नहीं जाएंगे भगवान के। तो पूरा पूरा शुद्ध होना चाहिए 100% ऐसे, उसका अर्थ होता है किंचित अपि चिंतयेत, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए ऐसे कहते हैं। और समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारी इंद्रिय करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि के अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो जब तक शरीर रहता है तब तक वो इंद्र तृप्ति की इच्छा रहता है, तो इसलिए उसको कम कर देना चाहिए और उसको अंत कर देना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियमेतात् आत्मन्नेवावशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां जहां भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। वो पिछले श्लोक में शनै शनैर भी क्या कहता है, धीरे 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 धीरे, तो तुरंत ही नहीं होगा, वो हमें याद रखना चाहिए, तो तुरंत ही नहीं होगा। हम लोग उत्साह तो होना चाहिए हमें भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन क्या है, रजस नहीं होना चाहिए। तो वो नहीं चलने वाला। सो उत्साह तो होना चाहिए और रजस नहीं होना चाहिए, और पेशेंट होना चाहिए लेकिन कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आए कि हमें धैर्य होना चाहिए लेकिन आलसी पर नहीं होना चाहिए। ये दोनों रजा तमोगुण का लक्षण होते हैं। तो अपनी मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, तो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो यतो निश्चलति मनश्चंचलम, वो मन का स्वभाव होता है, वो चंचल रहता है और अस्थिर रहता है और बार बार भागता रहता है। दुनिया के सभी विषयों को सोचेगा लेकिन भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं होगा, है ना। जब हम लोग जब करना बैठ जाते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा मन विचलित रहता है कि नहीं। दुनिया के सभी विषयों को सोचेगा, दुनिया के सभी विषयों के बारे में चिंतन करेगा और हमेशा उसके लिए कुछ इश्यू चाहिए मन में, है ना, इश्यू उसके बारे में चिंतन करेगा, है ना। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, तो इसलिए इंटरनेट में जाएंगे तो हमेशा मन ऐसे दुनिया का विषय भरा रहता है उसके, तो उसको चिंतन करते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ततस्ततो निम्नेतात् आत्मनैव वशं नहेत्, उसको वश में करना चाहिए बार बार, उसको वापस जब करते समय भी मन चल वो भागता रहता है, उसको बार बार खींच के लेके आना चाहिए, सुनो 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 करके उसको बार बार लेकर आना चाहिए। और कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं ना, प्रभु जी मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मन नहीं लगेगा, आपको लगाना है उसको। वो इस श्लोक का अर्थ है, है कि नहीं। लोग बोलते हैं ना, क्यों नहीं जब किया, मन ही नहीं लग रहा था। मन को आप मन के दास नहीं है, तो मन को आपके दास बनाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन को वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रिय के सेवक कहलाता है। तो गोस्वामी इंद्रिय सुख का मानक के मानक से विज्ञ होता है। तो दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। किसी को पता है ये कौन सा श्लोक है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्वरत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। वो हमारा प्रक्रिया है इंद्रियों को निग्रह पूर्ण वश लाने के लिए, यही विधि है प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो हमारा प्रक्रिया। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते, हमें हमारा इंद्रियों को ऋषिकेश जो है इंद्रियों के जो स्वामी है उनके सेवा में लगना चाहिए, तब इंद्रियां क्या हो जाते हैं, अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। या हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था, हम लोग इंद्रियों को वश में नहीं करते, भगवान उनको वश में करते हैं, वो अपने आप को उनको आकर्षित करते हैं। तो वो गीत में गोपीनाथ वो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, तुम्हें ऋषिकेश रसिक दमिया क्या है वो, तुम ही ऋषिकेश रसिका दमिया, एनीवे आप ऋषिकेश हो इसलिए आप क्या कीजिए, हमारे इंद्रियों को दमन कीजिए, ऐसे उनको प्रार्थना करते हैं। वो पूरा जो गोपीनाथ वो तीनों जो गीत है तो वो सिर्फ इंद्रियों को इच्छाओं को दमन करने के बारे में ही है। तो उसको 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 भी जब हमें वासनाएं क्या करते हैं तकलीफ देते हैं तो वो गीत गाना चाहिए, हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, तो ऐसे हो सकता है, है ना। तो हम लोग वश में नहीं करेंगे, भगवान वश उनको दमन करेंगे। सो इससे बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि है, दिस इज समथिंग प्रॉब्लम, दैट इज अ वे व्हाट इज मोर दैट इज हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ योगा प्रैक्टिस, दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ योगा प्रैक्टिस। इससे और कुछ चाहिए क्या? तो अगला श्लोक, प्रशांत आत्मा प्रशांत मनसम हे ह्याये एनम योगिनम सुकर्मोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम, जिसका मन प्रशांत शांत हो गया है वो सुखमुत्तमम दिव्य सुख को अनुभव करता है। उत्तम सुख मतलब इस भौतिक जगत के परे जो सुख है, और उसका क्या हो जाता है, उससे उस सुख का अनुभव करने से उपैति शांत रजसम, उसका रजस भी शांत हो जाता है। तो रजस के कारण ये मन भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है भागता है, बहुत सारा प्लान करता रहता है, बहुत सारा ऐसे कुछ करता रहता है, तो उससे वो शांत हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, ब्रह्म भूतम अकल्मषम, तो ब्रह्मभूत स्तर तक वो पहुंच जाता है, या परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो अकल्मषम मतलब तो विगत कर्मों से जो कर्म का जो कल्मश है उससे वो मुक्त हो जाते हैं, वो हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मन भक्ति लभते पराम, तो इसको उल्लेख कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो गया है तो न शोचती न कांक्षती, वो अपने जो कुछ भी खो गवा देता है या खो जाता है उसका उससे वो शोक नहीं करता है, और जिसके जो चीज उसके पास नहीं उसके पीछे वो भागता नहीं है, ही डज नॉट हैंकर। तो ये शांत रजसम इससे भी संबंधित है, शोक करना वो तमोगुण का लक्षण है, शुद्र तमोगुण में रहते हैं और हमेशा शोक करते रहते हैं, हाँ वो नहीं ये नहीं वो नहीं ग्रम्बलिंग 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 हमेशा। सो और रजस मतलब क्या है, वो किसी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हाँ ये सगड़ा पाई जाए, ये दिल मांगे मोर, लेकिन ऐसे पीछे पड़े रहते हैं वो, तो वो रजस है। हैंकरिंग इज रजस, लैमेंटिंग इज तमस। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यहाँ पर समझ में आ रहे वो कैसे श्लोक इस श्लोक से संबंधित है, प्रशांत मनसम यह योगिनम सुखमुत्तमम वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा को इंगित करता है। और उपैति शांत रजसम न शोचति न कांक्षति, शोचति शोक नहीं करता वो प्रसन्न आत्मा, इसलिए है शोक नहीं करता है। शोचति न कांक्षति सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परम ब्रह्म भूत कल्मषम। तो ऐसे होता है जब मनुष्य, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवय मन कृष्ण पदार, भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कर्म से मुक्त होना, तब ब्रह्मभूत मतलब भगवान के गुणात्मक एकता को समझता है या उसका अनुभव होता है उसको। जैसे आप देखिए अग्नि में एक क्या बोलते हैं उसको, रॉड, आयरन रॉड, लोहे की छड़ी डाल दिया तो वो बाद में क्या हो जाता है, वो भी अग्नि बन जाता है। वो ऐसे हमेशा भगवान के संपर्क में होने के कारण या कृष्ण भावनामृत में रहने के कारण, सवय मन कृष्ण पदारविंद होने के कारण हम भी भगवान के साथ गुणात्मक एकता को अनुभव करेंगे। सो अगला श्लोक, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी गतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं अत्यंतं सुखमश्नुते। तो इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो निरंतर लगा रहता है, युञ्जन सदात्मानम मतलब जो निरंतर लगा रहता है, सदा शब्द आता है ना सदैव। तो ऐसे ही हम लोग इस भक्ति को या योगाभ्यास या ऐसे भक्ति को अनुशीलन अभ्यास करते जाएंगे, साधना भक्ति को करते जाएंगे, करते जाएंगे तो क्या हो जाता है, ये सब हमें अनुभव हो जाएगा। तो एक साल के बाद दूसरा साल, साल साल सालों ऐसे ही जाना चाहिए। तो जैसे मन विचलित होता है उसको ला के वापिस लेके आके ऐसे ही सालों जाते हैं तो हमें ये सब यहाँ पर बार बार, पिछले श्लोक में भी सुखम उत्तमम का शब्द आया था, योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो पिछले श्लोक में भी कल्मष ब्रह्मभूतम अकल्मषम, यहाँ पर भी विगत कल्मष आया और फिर से सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसको मुक्त हो जाता है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परम सुख प्राप्त करता है। भगवान दिव्य सुख और सर्वोच्च सुख ऐसे बार बार यहाँ पर बोल रहे हैं तो उसका अनुभव होगा। तो जैसे आप ना ऐसे योगाभ्यास करते जाएंगे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते जाएंगे तो फिर ये सब भौतिक जगत के आकर्षण और यू नो वासनाएं वगैरह कुछ तकलीफ नहीं देती, वो सब तुच्छ हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसे ही चलते रहना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्म संस्पर्शन भी महत्वपूर्ण है तो उसको प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ इस दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो भगवान के साथ दिव्य सानिध्य का अनुभव होगा। जरूरी नहीं कि हम लोग भगवान के धाम जाना चाहे, इस जगत में भी रह के भी उसका अनुभव हो जाएगा, दिव्य सानिध्य का अनुभव होगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम लोग भगवान के साथ सीधा संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि नाम क्या है, भगवान से अभिन्न है। तो अभी हमें अभी उसका भगवान के जो सानिध्य, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हम लोगों को उसका अनुभव नहीं हो रहा है, भगवान के सानिध्य का अनुभव नहीं हो रहा है। हम दुनिया के सभी चीज हमें आकर्षित कर रहे हैं। आज सुबह हमारे हमें एक भक्त बता रहे थे कि वो प्रसाद जल्दी लिया उन्होंने, तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो वो बता रहे थे पहले उन्होंने बताया था पेट गड़बड़ है इसीलिए खा रहा बाद में उन्होंने बताया जप करने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन मनी न लग रहा, थंग आके प्रसाद लेने के लिए आ गया। तो इसलिए तो हम लोगों को वो सानिध्य का अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है हम लोगों के पास अभी भी कलमश, इस कलमश के कारण सबको है। तो वो ब्रह्म संस्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि चैंटिंग क्या है पूरा बहुत ही ड्राई लगता है ना, हालांकि वो रस विग्रह है ना, वो श्लोक है ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो रसों के विग्रह है, अखिल रसामृत मूर्ति है, सभी रस नाम में है। वास्तविक भौतिक रस रस क्या है, वो सब छपल सुख है, लेकिन फिर भी हम के हमें उसका अनुभव नहीं होता है, तो उनके उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अभी भी कलमश है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्य सिद्धितोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्वादरादम दिनम खलु सैव जुष्टा साध्वी क्रमा भवति तद्गत मूल हंत्री। तो जब तक ये कलमश का जो अविद्या का जो कलमश है उसका पी लिया रहता है, उसका स्वाद नहीं आए, तो उसको करते रहना चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, एक दिन ये जो है वो नष्ट हो जाएगा मूल से, सो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर हमें ब्रह्म संस्पर्श, तो फिर भगवान क्या है, प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, जब नाम उच्चारण करते तो भगवान हमारे जिह्वा के ऊपर नाचते हैं, ऐसा संस्पर्श हो जाएगा, उसको ब्रह्म संस्पर्श कहते, उसका अनुभव होगा, भगवान नाच रहे मेरे जिह्वा के ऊपर ऐसे। सो 29वां श्लोक, सर्वभूतं भूतस् सर्वभूतस्तमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र
अनुदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा और ये या वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, निस्संदेह स्वरूप सिद्धि सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यहाँ पर ये पूर्ण योगी के लक्षण, वो जब परिपूर्णता, अभी पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा ब्रह्म भूत ब्रह्म संस्पर्श, उनको भगवान के साक्षात्कार हो गया, तो वही परिपूर्णता है, उस परिपूर्ण योगी के अभी लक्षण भगवान बताएंगे अभी अगले 3 श्लोकों 4 श्लोकों में। सो भगवान उनके बारे में बताएंगे। तो पहला चीज क्या बता रहे हैं वो, इस श्लोक में या बार बार आत्मा शब्द फिर से आता, 3 बार आता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, तो सभी जीवों में आत्मा को देखता, आत्मा यहाँ पर भगवान है, परमात्मा है दूसरे शब्दों में, और सर्वभूतानि चात्मनि सभी जीवों को उनके अंदर देखता है, ईक्षते योग युक्त आत्मा, यहाँ पर जो तीसरा आत्मा आ गया वो जो व्यक्ति देख रहा है उसको संबोधित किया गया, सर्वत्र समदर्शन वो समदर्शन, सो वो समदर्शी है, पहले ही आया ना समदर्शी का परिभाषा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शन, ऐसा बताते हैं भगवान की विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। सो वो सभी में, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते खाने वाला चंडालों में भी सब जगह भगवान देखते हैं, ये इस व्यक्ति का परिपूर्ण जो योग में परिपूर्णता प्राप्त किया है उसके लक्षण है। भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं देखता है। तो भगवान तो यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद अलग अलग चीज वर्णन कर रहे हैं, कैसे वो सबके अंदर देखता है उसको वर्णन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वो कैसे बाहर भी देखता है या सभी जीवों में भगवान में देखता है उसको वर्णन कर रहे हैं। तो पहले वो कैसे सभी जीवों में भगवान विद्यमान है तो उसके बारे में वो कहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो वो सभी जीवों में भगवान को जो उपस्थित है, भगवान तो विद्यमान है सभी जीवों में, तो उनके हृदय में वो विद्यमान है। तो इसके बारे में बार बार भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, तो इसलिए उनको वो देखते हैं। इसके कारण, इनको देखने के कारण वो व्यक्ति क्या होता है, एक परिपूर्ण दृष्टा माना जाता है, या उनके दृश्य दृष्टि है वो परिपूर्ण है, ऐसे लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो देखता है कि कैसे भगवान सभी जीवों में विद्यमान रहते हैं। कोई कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, या कोई निम्न जाति के हो, सबके हृदय में वो विद्यमान रहते हैं और कभी भी ऐसे भौतिक चीज़ों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि कुत्ते के शरीर में या सुअर के शरीर में विद्यमान है तो वो गंदे हो जाते हैं, ऐसा नहीं, उनसे कुछ प्रभावित नहीं होता। उनका स्थिति क्या है, हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं भगवान, तो इसलिए उनको अच्युत कहा गया, अपने स्थिति से कभी वो गिरते नहीं हैं। और दूसरा चीज प्रभुपाद वर्णन कर रहे कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अंतर, हम लोगों ने उसको पहले चर्चा किया, परमात्मा सभी जीवों के अंदर विद्यमान है लेकिन जीवात्मा वो हर एक अलग जीवात्मा एक एक शरीर में विद्यमान है। तो और प्रभुपाद जी कहते हैं, जो वास्तव में योग अभ्यास को नहीं किया है वो लोग ऐसे देखते नहीं है, सही दृष्टिकोण से देखते नहीं है। तो उसका दृष्टि सही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और क्या है यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर, जो नास्तिक है और आस्तिक है, दोनों के हृदय में वो योगी परमात्मा को देखते हैं। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो बाद में यहाँ पर चर्चा होगा एक दो श्लोक के बाद, कि सबको वो प्रचार करते हो, नास्तिक हो या, क्योंकि वो देखते हैं सबके अंदर परमात्मा है करके। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक स्मृति शास्त्र से उल्लेख कर रहे हैं, वो मत्स्य पुराण है 29th verse, नहीं नाट मत्स्यपुरा, ये कहाँ से पता नहीं है ये श्लोक, बहुत सारे आचार्यों ने इसको उल्लेख किया लेकिन वो कहाँ से है पता नहीं। चेतन चरितार्थ में भी आता है ये श्लोक लेकिन वहाँ पर भी उसका रेफरेंस नहीं दिया है। आततत्वाश्च मातृत्वाश्च आत्म ही परमो हरि ही, तो इसका अर्थ होता है जैसे माता सभी बच्चों को क्या करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, जनरली ऐसे होता, थोड़ा भेदभाव होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा होता है ना माता पिता, लेकिन फिर भी अंदरूनी रूप से देखेंगे तो किसी को भेदभाव नहीं करते हैं। तो वैसे ही परमात्मा जो है वो किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, सबके हृदय में वो विद्यमान रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या भगवान को छोड़कर इस जगत में, हा? तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है सबके सबको उतना समभाव से देखता है। तो ये जो
योगी है, वो पूर्णता को प्राप्त किया है, इस गुण को देखते हैं भगवान में। भगवान कैसे सबके हृदय में विद्यमान है, वो चांडाल के हृदय में भी विद्यमान है, वो हाथी के हृदय में भी विद्यमान है, एक गाय के हृदय में भी विद्यमान है। इसलिए उनको भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम हो जाता है। तो ये भावना के कारण कि वो देखते हैं, बहुत ही उनको अद्भुत लगता है कि कितना महान है भगवान, कि सबके हृदय में विद्यमान है, एक माँ के समान सबको वो प्रेम करते हैं, वो कोई भी भेदभाव के बिना। फिर ये सबके हृदय में भगवान को देख रहे, परमात्मा को देख रहे, और सभी जीवों को भगवान में देख रहे हैं। वो कैसे होता है, प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि सभी जीव भगवान के शक्तियों में ही विद्यमान है। सो भूमि रपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रे वच, ये अगला अध्याय में आएगा। भूमि रपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति अमे भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा अपरेयम इतस्त्वान्यम विद्धि मे प्रकृति पराम जीवभूतम महाभाव एकदम धारित है जगत। तो इसका अनुवाद समझते हैं ना, सबको पता है ना अनुवाद, पता है सबको, बताओ। He knows the verses, उसको जीवभूत कहते हैं, जो इस पृथ्वी को, ये ब्रह्मांड में भौतिक जगत को शोषण करने के लिए प्रयास कर रहा है, प्रभुत्व जपाने का प्रयास कर रहा है। उसका अगला श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये तद योनि निभूतानि सर्वाणि त्युपदारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। इस जगत में जो भी चीज विद्यमान है वो दोनों ये शक्तियों के कारण संयोजन से है। तो दूसरे शब्दों में सभी जीव भगवान के शक्ति में है ना, बाहर से, और भगवान सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो ये परिपूर्ण व्यक्ति योगी क्या है, इसको देखता है, सब कुछ भगवान के संबंध में देखता है। और तो और वो भी देखता है कि कैसे सभी जीव भगवान के सेवक है, वो भगवान को सीधा सेवा करे या ना करे, हमेशा वो, क्योंकि इस जगत में क्या है, भगवान है और उनके माया शक्ति है, वास्तव में वो एक ही भगवान ही है, वो हम लोग उससे अलग समझते हैं, इसके कारण वो माया है। तो वो भगवान को सेवा नहीं करता है तो वो माया, भगवान के माया शक्ति को सेवा करता है। तो कभी भी भगवान के सेवा से वो च्युत नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये योग में पूर्णता प्राप्त किया है, वो सबको भगवान के दास के रूप में वो देखते हैं। तो अगला श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होते हैं। तो पिछले श्लोक से आगे बढ़ते हुए भगवान कह रहे हैं, सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, वो पिछले श्लोक का ही अर्थ है। पहला लाइन क्या है, वो सार है पिछले श्लोक का, तस्याहं न पश्यामि न च मे न प्रणश्यति, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और मेरे लिए अदृश्य न वह मेरे लिए अदृश्य होता है, ऐसे व्यक्ति तो हमेशा वो भगवान को देखते हैं। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारमूर्ति सर्वत्र हय इष्ट देव स्फूर्ति, जब भी कोई स्थावर जंगम मूविंग एंड नॉन मूविंग ऐसे चर और अचर जीवों को देखते हैं या चीजों को देखते हैं तो उनको क्या हो जाता है, भगवान का स्मरण आ जाता है। तो क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं भगवान के संबंध में देखते हैं, सब कुछ वो जानते हैं कि भगवान की शक्ति है। तो इस भौतिक जगत के स्थावर जंगम जो जो मूविंग एंड नॉन मूविंग, वो चीजों को नहीं देखते, वो सिर्फ भगवान को देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में भी और भी बताया गया, यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्पुरे, जहां भी उनका नेत्र पड़ता है सिर्फ वो भगवान को देखते हैं या भगवान को स्मरण आता है। तो ऐसे इसका अर्थ क्या हो गया, पत्थर भगवान नहीं बन जाता है, लेकिन वो भगवान के संबंध में हो गए, ये भगवान का शक्ति है करके उनको भगवान का स्फूर्ति होता है। समझ में आ गए, ऐसा नहीं कि हम लोग मायावाद बता रहे हैं, हाँ पत्थर भगवान बन जाता है ऐसा नहीं है। तो भगवान का स्फूर्ति होता है। तो उस समय जहाँ यहाँ जैसे ऐसे व्यक्ति को कैसे होता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति, मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि उनके जो नेत्र है प्रेम के अंजन से लगे हुए, अंजन लगा हुआ है उनके नेत्रों में, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो कहते हैं प्रेम का अंजन लगने के कारण, भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेश विलोकयन्ति, भगवान को हमेशा अपने हृदय में वो देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, सबके हृदय में देखते हैं। तो सदैव मतलब हमेशा 2400 घंटों कभी भगवान अदृश्य नहीं हो जाते, ये 24 आवर टेलीविजन शो है, समझ में आ गया, 2400 घंटों ये टेलीविजन शो चलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी या यू नो ऐसा सैटेलाइट सिग्नल के ऊपर निर्भर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गए तो ये भी बंद हो जाता है या ऐसे सिग्नल कट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो 2400 घंटों ये टेलीविजन चलता है भगवान को हृदय में, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, ऐसे श्याम सुंदर जिनके पास अचिंत्य गुण गुण है और स्वरूप है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, जब भी वो वहाँ पर जगन्नाथपुरी में वो छटक पर्वत, छटक पर्वत मतलब ऐसे वो रेत से ऐसे कुछ समुन्द्र के तक हवा के कारण एक पर्वत बन जाता है, तो उसको देखकर वो गोवर्धन करके उसके ऊपर भाग जाता, भागते थे वो उसकी ओर भागते थे। तो वो पर्वत को नहीं देख रहे, वो भगवान को स्मरण, गोवर्धन के उनके भगवान के गोवर्धन के साथ जो लीलाएं हुए उसका स्मरण हो रहा है। समुन्द्र को देखते हैं तो यमुना करके उसमें कूद पड़ते थे। तो ऐसे और ऐसे भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में भी, वन देखी हो या वृंदावन, तो वन को देखा तो क्या हो जाता है, उनको वृंदावन का स्मरण आ जाता है। तो ऐसे वर्णन आता है। तो जब श्रील प्रभुपाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में उतर गए, उन्होंने कहा ये लोग इसको क्या इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, मैं तो ये कृष्ण का क्या है स्थान मानता हूँ, कृष्ण को छोड़कर और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये लोग ऐसे ही आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अलग अलग बाउंड्री बनाया है और उनका उनका नाम दिया है, अलग अलग देशों का नाम दिया है, लेकिन कृष्ण के जगह को छोड़कर और कुछ है क्या इस जगत में, कुछ भी नहीं। तो है ना, अपना भरा ये सब चीज उसमें, वो भगवान के भक्तों में, ऐसे भक्तों में जो पूर्ण योगी रहता है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के संबंध में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कचोरी खा रहे थे, उनके मित्र आके उनको बुलाया, अभी ब्लैकआउट हो गया, अभी यू नो बॉम्ब गिरने वाले हैं, जापान के सेना बॉम्ब, क्योंकि उस समय पर द्वितीय युद्ध चल रहा था, महायुद्ध चल रहा था, तो उसके कारण, क्योंकि भारत क्या है, अंग्रेजों के सरकार था यहाँ पर, इसलिए जापान के लोग भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो वो सुभाष चंद्र ने भी वो जापान के जो सेना को लेकर भारत के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि भारत क्या है, अंग्रेजों के हाथ में था। तो प्रभुपाद जी को बुलाया जा रहा है, बॉम्ब गिरने वाला है, प्रभुपाद जी कचौरी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का कचौरी करना आरंभ कर, मतलब उसको जारी रखा हुआ। तो वो क्या देख रहे थे, वो बॉम्ब में भी भगवान को देख रहे थे। वो कहते हैं भगवान मुझे मारना चाहते हैं तो मार देंगे, तो वो रक्षा करते हैं तो ये बॉम्ब भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे उनको हमेशा भगवान का स्मरण रहता है, भगवान को देखते हैं सब जगह। तो और क्या है, तो अंत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखने बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो ऐसे कहा गया, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वता वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। यहाँ पर बताते हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न मानता है, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, ऐसे समझकर वो वही व्यक्ति हूँ मैं कृष्ण। तो ऐसे समझ के वो जो भजन करते हैं, सर्वता वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, तो वो हमेशा सदैव मुझ में स्थित रहता है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे कि तो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे है कि जो योगी है योगाभ्यास को करते हैं, वो भगवान के चतुर्भुज रूप को देखते हैं अपने हृदय में। तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया कि ऐसा नहीं वो एक कोई ऐसे लाइट के ऊपर वो ध्यान करेंगे या ऐसे शून्य के ऊपर ध्यान करेंगे, चतुर्भुज रूप जो भगवान हृदय में स्थित है, तो वो भगवान हृदय में स्थित है। वो कभी कभी उनको इतना साइज के बताया जाता है, कभी कभी इतना साइज का बताया जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट है ना, हृदय के साइज के अनुसार, हमारे शरीर के साइज के अनुसार उनका अलग अलग साइज होता है परमात्मा का भी। तो वो शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथ में लिए हुए भगवान जो हृदय में रहते हैं वही कृष्ण है। जब उनके ऊपर ध्यान करता है तो वो हमेशा मुझ में स्थिर रहता है, ऐसे भगवान कह रहे। सो ये योगी को ये जानना चाहिए कि विष्णु क्या है, भगवान विष्णु जो हृदय में है वो कृष्ण से अभिन्न है। ऐसे परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण का जो है रूप सबके हृदय में है, और एक और चीज श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण और परमात्मा को एक तो मानना चाहिए, उसके अलावा सभी जीवों में जो परमात्मा विद्यमान है वो सब एक ही है, वो हमें जानना चाहिए। तो जानना चाहिए हम लोग दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे, एक मायावाद सिद्धांत जो मायावाद धारणा के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसी को पता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंबवाद। क्या है वो बताइए, प्रतिबिंबवाद क्या है, क्या कहते हैं वो लोग? वो कैसे, वो प्रतिबिंबवाद भी क्या है? वो एकात्मवाद का एक 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 धारणा है, एक अंश है। क्या है वो मायावाद दर्शन, हम लोगों ने चर्चा किया ना,
सूर्य चंद्र का प्रकाश पड़ता है घरों में समाहित कर, तो वो एक बहुत हो जाता
है। मनोहर को याद है देखो, है ना? नहीं, एक ही आत्मा है, वो सभी जीवों में उसका प्रतिबिंब हो गया है, अभी रिफ्लेक्टेड, ही हैज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द लिविंग बीइंग्स, उसको प्रतिबिंबवाद कहते हैं। तो हमने वहां पर चर्चा किया, वो प्रतिबिंबवाद आत्मा को लागू नहीं होता है, वो परमात्मा को लागू होता है, है ना? यहाँ पर मत्स्य पुराण से अंत में प्रभुपाद जी यहाँ पर उल्लेख कर रहे, देखिए, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी है, एक रूप होते हुए भी वे अपने अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। जैसे हम कह रहे थे ना, आपके मित्र को अब फोन लगाइए कहीं दूसरा देश में, उनको पूछिए सूरज कहाँ है, वो बताएगा मेरे सर के ऊपर है, है ना? हम लोग भी उसको अपने सर के ऊपर देखते हैं, तो एक ही समय में सब जगह वो विद्यमान रह सकते हैं, जैसे परमात्मा विद्यमान है। तो हम उस समय पर हमने वो भीष्मदेव का भी एक एक श्लोक उल्लेख किया था, कैसे भीष्मदेव अपने प्रार्थना में भगवान को प्रार्थना में कहते हैं कि आप जैसा सूरज या सबके सर के ऊपर रहते हैं, वैसे ही आप परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर रहते हैं, ऐसे हमने कहा था। तो वो भी हमें देखना चाहिए। इसका अर्थ है सर्वभूतम स्थितम यो माम वजत एकत्वम अस्तितः। तो एकत्वम अस्तितः मतलब सबके हृदय में जो परमात्मा विद्यमान है वो एक ही है, और दूसरा क्या है, वही भगवान कृष्ण, वो परमात्मा और भगवान कृष्ण वो भी एक ही है, ऐसे हमें जानना चाहिए। सर्वता वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। तो सर्वता वर्तमानोपि, हालांकि वो योगी वो हमेशा मुझ में रहते हैं, ऐसे कहते हैं। या यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस जगत में रह के भी वो क्या है, मुक्त है। निखिलाश्वपी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। तो वो मुक्त हो जाता है, ऐसे जो भगवान को सब जगह देखते हैं वो एक ही भगवान है, वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे जानते हैं। तो अगला श्लोक, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो यहाँ पर हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों के उनके सुखों तथा दुखों को वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इसका अर्थ है क्योंकि उन्होंने जो सुख दुख का अनुभव किया है उसके अनुसार ही वो जानते हैं कि सभी जीव सुख दुख को अनुभव करेंगे या कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो व्यक्ति है वो सबको वो प्रचार करते हैं, तो क्योंकि उनको सहन नहीं होता है ये देखना कि ये देखते हुए कि जीव इतने सारे दुख भुगत रहे हैं करके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सर्वोच्च कल्याण करने वाला व्यक्ति है, सर्वोच्च मानवतावादी, क्या बोलते हैं उसको, मानवतावादी नहीं, मानवता, मानव सेवा करने वाले व्यक्ति है, फिलान्थ्रोपिस्ट। सो या समाज सेवक है, सर्वोच्च समाज सेवक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् ने प्रिय कृतमः, इस जगत में ऐसा कोई प्रिय नहीं है और आगे भी ऐसे कोई प्रिय नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। तो सभी जीव इस भौतिक जगत में त्रिविधता को अनादि कृष्ण बुलिया से जीव अनादि बहिर्मुख। सो अतएव क्या है संसार दुख, क्या है तो कृष्ण बुलिया, भगवान कृष्ण को भूल के अनादि काल से यहाँ पर भौतिक जगत में दुख भोगत रहे जीवात्मा बहिर्मुख होकर भगवान कृष्ण, तो ये तो जानते हैं ऐसे, इसके कारण उनको भगवान कृष्ण के बारे में समझाते हैं और उनको इस दुख से कष्टों से मुक्त कराते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के, विशेष करके सभी योगी में वो परिपूर्ण योगी है, इसलिए जो भक्त है वास्तव में आप देखेंगे तो इन श्लोकों से क्या समझ में आता है, हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भगवान अष्टांग योगी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, भक्त के बारे में वर्णन, क्योंकि अष्टांग योगी वो क्या करते हैं, वो लोग सुचोदेश प्रतिष्ठाप या वो निर्जन स्थान में जाते हैं, वो किसको प्रचार करने के लिए आते हैं, किसका दुख देखने के लिए आते हैं। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति के बारे में या कृष्ण भावनामृत के बारे में लिखते हैं वो गलत नहीं है ना, इस श्लोकों से हम लोग वही चीज देखते हैं। तो यहाँ पर अंत में वो कहते हैं या प्रहलाद महाराज भी, तो प्रहलाद महाराज भी वो कहते हैं कि प्रायेण देव मनयो स्वविमुक्ति काम मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुक्षये को नान्यम त्वदस्य शरणम ब्रह्मतोनुपश्ये। तो बहुत सारे प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति काम, तो हे भगवान देव, ज्यादा से ज्यादा सभी जो मुनि लोग होते हैं अपने विमुक्ति काम, अपने मुक्ति की इच्छा से वो लोग क्या करते हैं, मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा, मौनम चरन्ति वो निर्जन स्थान में विचरण करते रहते हैं, चरण करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं वहां पर, क्योंकि उनको अपने मुक्ति की चिंता रहता है। न परार्थ निष्ठा, दूसरों के भलाई के लिए उनको चिंता नहीं रहता है। तो श्रील प्रभुपाद भी वृंदावन में थे, वो बहुत ही संतुष्ट थे, वृंदावन भगवान के धाम ऐसा नहीं था, आज को जैसे आप वृंदावन देखते हो ऐसा नहीं था, उस समय बहुत ही शांत था, हमेशा सभी है ना भगवान को स्मरण दिलाने वाला, वो भी वो राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे जहाँ पर रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर और भजन कुटीर दोनों हैं, और जीव गोस्वामी के राधा दामोदर विग्रह है बहुत सारे, ऐसे वातावरण में जिसको पूरा आध्यात्मिक जगत का हब माना जाता है वो राधा दामोदर मंदिर को, तो वहाँ पर वो रहते, तो बहुत ही सुखी जीवन था वो, फिर भी परार्थ निष्ठा, दूसरों को भलाई करने के लिए वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सबको प्रचार करने के लिए वो क्या गए, बाहर गए। नैतान विहान, तो कृपणा विमुक्षये को। वो कहते हैं हाँ प्रहलाद महाराज, इन कृपणों को, भौतिक जगत में जो जीव है, जो अपने मनुष्य जीवन का जो जो महत्व को जो समझते नहीं है, उनको छोड़कर कैसे मैं अपने विमुक्ति मुक्ति के बारे में कार्य करूँ, उसके बारे में ही सोचूँ, उनके बारे में भी मैं करना चाहता हूँ, ऐसे भक्ति प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। नान्यम तदस्य शरणम रमतोनुपश्ये। सो तो वो कहते हैं कि मैं उन सबको आपके चरणों में वापस लेकर आने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ, ऐसे कहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में अंत में आप देखिए, अंत में देखिए वो क्या कह रहे हैं, उस श्लोक को बाद है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः इसके बाद वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह स्वतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अभी तो अन्यों के लिए भी चाहता है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, इन कृपणों को छोड़कर मैं कैसे अपने आप अपने सिद्धि के बारे में सोचूं, ऐसे कहते हैं। तो वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता, यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धारण के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने में प्रयास करता रहता है ना। तो भगवान के जो भक्त है वो सबको अपने समान आत्म, वो है ना, हो आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत अपने जैसे वो देखते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी अर्जुन, तो यहाँ ये पूरा वर्णन हुआ, अष्टांग योग का वर्णन हुआ, कहाँ से, शुचो देशे प्रतिष्ठापे, वहां से यहाँ तक योगी परमह उस वहां तक। तो अभी अर्जुन उसको इसको ना, ये नहीं होने वाला है, इसे बोल देंगे अभी, उसको नकार देंगे। तो अर्जुन उवाच, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है आपने, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो क्यों ये अव्यवहारिक है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है, उसको काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे बोल रहे हैं। अभी 5000 पूर्व भगवान जो अर्जुन को यो जो वो व्यवहारिक नहीं है, तो अभी इस कलियुग में कैसे व्यवहारिक होगा। कलियुग के लोग प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रतः। तो जो नैमिषारण्य के मुनि वो कहते हैं, प्राय सभी जीव कलियुग में ऑलमोस्ट ऑल क्या है, अल्प आयुष, उनका आयु बहुत ही कम है। खलो अस्मिन् युगे जनाः मंद, वो बहुत आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए बहुत ही, दे आर वेरी लेजी, वेरी स्लो, उसको मंद कहते हैं। वो बहुत ही क्या बोलते हैं, कम गति के है, इसको समझने के लिए मंद है। What happens when he comes, everyone attention goes there. So, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो, सुमंद मतयो मतलब वो मिसगाइडेड, ऑलवेज ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, मिसगाइडेड एंड डिस्ट्रैक्टेड, है ना। बहुत सारे विषय है ना जिसके पीछे पीछे लोग, दुनिया लोग पड़ा है इस जगत में, है ना। कोई ऐसे क्रिकेट के पीछे पड़ा जाता है, कोई वर्ल्ड कप आ गया तो उसके पीछे पड़ता है, कोई ऐसे सॉकर कप आ गया तो उसके पीछे पड़ता है ना, या ऐसे कुछ ना कुछ विषय के पीछे हमेशा वो लोग पड़े रहते हैं, इसको डिस्ट्रैक्टेड। और कोई कई लोग होते हैं उनको गुमराह करने के लिए, वैज्ञानिक लोग, राजनीतिज्ञ लोग, जो अन्य तथाकथित गुरु साधु बाबा अम्मा अप्पा अम्मा सब लोग क्या करते रहते हैं, गुमराह करते रहते। ये कलियुग का लक्षण है। सुमंद मतयो मंद भाग्य, वेरी अनफॉर्चुनेट, उनका कोई सौभाग्य ही नहीं है। और उपद्रता, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, ये कलियुग का लक्षण। ऐसे डिस्टर्ब लोग कैसे मन को वश में करके ऐसा अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे? कौन है वैसा व्यक्ति इस जगत में, है क्या कोई? प्रभुपाद वीरल प्राय प्राय ना बताया ना, कोई कुछ हो सकता है लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये होगा नहीं। ऐसा कोई है क्या? शुचो देश है, आपको घर को त्याग करके चले जाए। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं मंदिर है यहाँ पर, यहाँ पर नज़दीक में आके कुछ भक्ति करो, वानप्रस्थ लेके थोड़ा सेवा में लग जाओ, ऐसे बोलते हैं। वो भी नहीं करते लोग। और वो ऐसे निर्जन स्थान में जाके सर नीचे करके हाथ पांव ऊपर करके कौन खड़ा होने वाला है ना? कोई है क्या इस जगत में, कलयुग में? वो कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। इसलिए ये जो संस्थाएं हैं जो योग को प्रचार कर रहे हैं, वो सब बकवास है, सब मौकरी है, दिखावा है बस, और कुछ नहीं। तो वास्तविकता नहीं है इसमें। तो ऐसे अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं। प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, देखिए जो लोग अंत में कह रहे हैं, जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो किंतु ये सचमुच ही अपना समय गवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। उनको पूरा ज्ञान अंधकार में है। वो लक्ष्य क्या है योग अभ्यास करने का, उसको कुछ उनको जानकारी नहीं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को उल्लेख करके उसके ऊपर प्रवचन दिया, उन्होंने उसका टाइटल दिया गया योगा एज रिजेक्टेड बाय अर्जुन, अष्टांग योग का। तो योगा एज रिजेक्टेड बाय अर्जुन, ऐसे योग जिसको अर्जुन ने रिजेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नकार दिया। तो अगला श्लोक लेंगे। भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान अर्जुन होगा या नहीं? अर्जुन आगे बोल रहे, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ने वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर और क्या है, क्या बोलते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे।
हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर श्रृंखल कुटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है।
तो मन के क्या क्या लक्षण बता रहा है यहाँ पर, नेचर ऑफ द माइंड। आजकल बहुत साइकोलॉजी वगैरह बहुत डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर देखिए कैसे बताया गया। चंचल रहता है, जैसे एक बच्चा रहता है ना चंचल, हमेशा चंचल रहता है, वो एक चीज में स्थिर नहीं रहता है, वैसे चंचल रहता है। या कोई बंदर होता है ना, बंदर एक शाखा से दूसरे शाखा में हमेशा जंप करते रहता है, एक ही में स्थिर नहीं रह सकता। तो ऐसे बंदर के समान होता है मन। और प्रमाती मतलब यहाँ पर उस एजिटेटिंग, क्या बोलते हैं वो, उश्रंकल है, उश्रंकल है। तो एजिटेटिंग मतलब क्या है, आपको विचलित कर देगा वो। ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत तकलीफ देते हैं ना, आप मन विचलित हो जाता है उससे,
एजिटेट हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, तो ये मन का स्वभाव है, वो हमें हमेशा एजिटेट करता रहता है। प्रमाति बलवदृढ़म, बहुत हटीला है, बच्चा हटीला होता है ना, देना ही पड़ेगा उसको जो चाहिए, हाँ नहीं तो इतना चिल्लाएगा, है ना करके हाँ वो हटीली बोलते हैं उसको, हम बलवत या हटीला नहीं, दृढ़ मतलब हटीला और बलवत मतलब बहुत ही बलवान है। कभी कभी बच्चे भी बहुत शक्ति लगाते हैं लोग, तो ऐसे मन भी ऐसा है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान भी अधिक कठिन लगता है, तो वायु को भी कठिन लगता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं वास्तव में कैसे होना चाहिए, मन हमारे वश में होना चाहिए। तो वो तीसरे अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किया, किसी को याद है वो श्रृंखला को चर्चा किया ना, इंद्रियाणि परण्यावोर इंद्रियभ्य परम मनसस्तु पराबुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सह। तो वहाँ पर वर्णन किया गया है कि इंद्रिया ये स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ क्या है बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो व्यक्ति आत्मा। लेकिन अभी बद्ध अवस्था में क्या हो गया, सब उल्टा हो गया, इंद्रियां प्रबल हो गए हैं, मन प्रबल हो गया है, बुद्धि बहुत दुर्बल है, बुद्धि कामुक है, कुछ उसको निर्णय नहीं ले पाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके कारण आत्मा उसके प्रभावित हो गया, ऐसे कामुक बुद्धि के प्रभाव में होकर जैसे मन और इंद्रियां खींच के लेके जा रहे हैं वैसे खींच के। उस समय पर हम लोगों ने ये भी उदाहरण लिया था, ये कठोपनिषद से, आत्मा नाम गतिनम बुद्धि, तो ये शरीर को रथ के समान समझना चाहिए, नहीं रति नाम, रति मतलब जो रथ में प्रयास करते हैं, रति एक रति महारति अति रति सब रति होते हैं ना, भौतिक जगत में सब महारति नहीं है, सब लोग सब अर्धरति है, अर्धरति भी नहीं, क्लीन बोल्ड हो गया सब लोग, है ना मन के द्वारा। आत्मा नाम रतिनम विद्धि शरीरम रत ये बचा, इस शरीर को एक रथ के समान, रथ या भगवान भी एक यंत्र को तुलना करते हैं बाद में, या कि ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल से आजकल रथ नहीं है ऑटोमोबाइल है, उससे तुलना कर सकते हैं। तो लेकिन रथ एक परिपूर्ण उदाहरण है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि, हम लोग जैसे वैदिक सभ्यता से दूर चले जाएंगे ये सब चीज़ नहीं सीखेंगे आप, है ना, कैसे आप कोई रथ को ही देखा नहीं तो ये कैसे आप उदाहरण समझें, है ना, ऐसे बहुत उदाहरण यहाँ पर देखेंगे वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। आत्मानं रतिनां विद्धि शरीरं रतमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्राग्रहमेव च। तो आप वो लिख दीजिए, रथ मतलब हमने पहले बताया था ना पहले श्लोक के तात्पर्य में, कैसे हमें ऐसे उपमाओं को या उदाहरणों को अध्ययन करना चाहिए, कौन सा चीज़ किससे वो प्रतिनिधित्व करता है उसको हमें समझना चाहिए। तो रति मतलब क्या है, वो आत्मा है, रथ मतलब शरीर है, ऐसे लिखते जाइए सब कुछ। सो बुद्धिम ही तू सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है, वो सारथी है। मन प्राग्रहम ये वच, मन माइंड इज रेंज, रेंज रस्सी, तो जिसके द्वारा सभी जो घोड़े हैं उनको इंद्रियानी हयन्याहु हयानाहु, हया मतलब जो घोड़े हैं उनको हय कहते हैं, घोड़ा हय हयान मतलब घोड़े, विषयांस्तेषु गोचरान, जो विषय इंद्रिय विषय है उनके गोचर है, जिसके पीछे वो भागते हैं वो घोड़े। आत्म इंद्रिया मनोयुक्तम भोक्तते आहुर मनीषिणः, ऐसे होते हैं। तो वो कैसे होता है ये मैकेनिज्म, अभी हम लोगों ने हमने कैसे होता है मैकेनिज्म,
तो इंद्रियां इंद्रिय विषयों को देखते हैं वो,
विशेष करके ज्ञानेन्द्रिया जो होते हैं।
तो ऐसे आपने देखा गुलाब जामुन देख लिया वहाँ पर रास्ते के ऊपर जाते जाते जाते, तुरंत ही वो इंद्रिया वो ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यहाँ पर गुलाब जामुन है करके वो स्वादिष्ट चीज़ है, वो मन को वो क्या करते हैं, वो संदेश भेज देते। और मन क्या है, उसमें इच्छाएं हैं बहुत, खाने की इच्छा, ऐसे वो करने की इच्छाएं हैं, गोडाउन है वो, और पूर्व खाने के भी अनुभव भी रहते हैं उसमें, एक्सपीरियंस। तो वो क्या कर देता है, फिर बुद्धि को वो संदेश भेज देता है और बुद्धि निर्णय करता है क्या मेरे पैसे पैसे है क्या मेरे पर्स में है करके उसको खरीदने के लिए, और वो खाने के लिए मुझे योग्य है क्या नहीं है, अभी खाना चाहिए कि नहीं, अभी मैंने बहुत प्रसाद खा लिया है फिर खाना है कि नहीं, या ऐसे जो भोग है जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो बुद्धि कामों का है तो वो शुद्ध नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो कर्मेंद्रियों को आदेश देगा, हाँ पैसा है सब कुछ है खरीद लो जाओ और ले लो खा लेना, ऐसे कर्मेंद्रिया क्या करते हैं उसको कार्य को कर देते हैं। तो अभी हमारा स्थिति ऐसे हो गया है क्योंकि दुर्बल बुद्धि है खामुख है और अनियंत्रित इंद्रियां हैं। आप देखिए ये रथ का यहाँ पर उदाहरण दे रहे, उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सभी जो पांच जो घोड़े हैं पांचों दिशा में खींच के लेके जा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं उसके, घोड़ों के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो क्या स्थिति होगा, वो कहाँ पर जाके गिरेगा वो रथ, हाँ है ना, हमारे इस्कॉन में वो चित्र बनाया है वो रथ को क्या पर, वो एक पर्वत के ऊपर लेकर गया है वो और पर्वत के वो क्या बोलते हैं उसको अंदर एड्ज 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 शिखर के वो एड्ज 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 को क्या बोलते हैं, ऐसा पत्थर है बड़ा किनारे में है और ये खींच रहे तो एक दूसरे क्या होगा वो गिर जाएगा ऐसा हमारा स्थिति है, बहुत ही प्रकैरियस बहुत ही खतरनाक अवस्था है जीव का। तो चंचलम ही मना कृष्ण, तो ये मन को तो काबू करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मन इतना प्रबल होने के कारण अन्य योग पद्धति को करने से हमें इसको काबू नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, कभी कभी जब रोग जो है बहुत प्रबल प्रभावित हो जाता है हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है तो वो जो औषधि है उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते हैं वो उसके ऊपर ऐसे कहते हैं। तो हमारा स्थिति ऐसा है अभी बद्ध अवस्था, कोई भी ऐसे कुछ औषध जो योग अभ्यास करना वगैरह विशेष करके अष्टांग योग करने से कुछ नहीं होने वाला, ये रोग से हम लोग मुक्त नहीं होने वाले। तो या यहाँ पर जो अर्जुन उदाहरण दे रहे ब्लोइंग द विंड, ऐसा जो हवा है उसको भी उसको रोकने से भी ये कठिन है, ये मन को रोकना इतना मुश्किल है। तो अंत में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं सवय मना कृष्ण, जैसे अमरीश महाराज के उदाहरण देते हुए उन्होंने जो मन को भगवान के चरणों में लगाया हुआ या महामंत्र को उच्चारण करने से हम लोग मंत्र क्या करते हैं इस मन के ऊपर काबू करते हैं। तो मंत्र उच्चारण से मन नियंत्रित होता है कि नहीं, इंद्रिया कैसे नियंत्रित होते हैं उनको सेवा में लगाने से नियंत्रित होते हैं। तो विशेष करके ये जो हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र उच्चारण करने से मन नियंत्रित, मंत्र शब्द का यही अर्थ क्या है, मन त्रायते इति मंत्र, मन को तारने वाला, उसको तारने वाला मतलब उसको विषयों से वो मुक्त कराता है विषय, उसको मंत्र कहते हैं। और विशेष करके ये जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये महामंत्र है, ये महान शब्द है जो मन को तारता है। तो इसको ये श्योर शॉट है पता है, तो ये आसानी से क्या मन को नियंत्रित कर सकता है हरे कृष्ण महामंत्र। तो अच्छी तरह से हम लोग जप करेंगे तो
आप देखिए, जिस दिन आप मन ये हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छी तरह से करते हैं तो उस दिन मन शांत रहेगा, ऐसा भड़के भड़काएगा नहीं आप। तो ठीक है, ये विधि है इसको नियंत्रण करने की। तो अगले श्लोक में हम लोगों को प्रभुपाद जी ने बताया कैसे नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन अर्जुन को तो नहीं बताया, तो इसलिए भगवान उनको बताया कैसे करना चाहिए। तो अगले श्लोक में
श्री भगवान उवाच असंशयम समग्रम माम यथा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेनुत कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
हमारा मन सातवें अध्याय में है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपर्युक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है।
कैसे कहते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं, फिर भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं मन को नियंत्रण करना मुश्किल है करके वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रोत्साहन, महाबाहो तुम महान शक्ति महान बुझाव वाले योद्धा हो, तुम आप कर सकते हो, या आप जब तक महाबाहो नहीं तब तक आप इस मन को नियंत्रण नहीं करते, आप सिर्फ नाम के महाबाहो है ऐसे। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये वास्तविक क्या है, एडवेंचर है। लोग एडवेंचर करना चाहते हैं ना, ऐसे है ना, कोई पर्वत को चढ़ना चाहते हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहते हैं वो लोग दुनिया जीवन में। हम भी ऐसे सोचा करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था सबसे बड़ा एडवेंचर क्या है, इंद्रियों को निग्रह करना या ये मन को निग्रह करना, तभी महाभाव कहलाते हैं, है ना, है कि नहीं, सबसे बड़ा एडवेंचर है ना ये जीवन में, ऐसा कोई एडवेंचर हो सकता है क्या? तो कभी कभी सोचते थे कि जीवन में कुछ ऐसे विशेष करना चाहिए, क्या है दुनिया में लोग है ना ऐसे पढ़ाई करते हैं, जॉब लेते हैं, विवाह करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, और उनका भी विवाह करते हैं और मर जाते हैं, कुछ विशेष करना चाहिए जीवन में, है कि नहीं? तो क्या विशेषता है लोगों को पता नहीं रहता, कभी कभी ऐसे हम सोच सकते हैं कि विशेष करना चाहिए करके, लेकिन विशेषता क्या है, सबसे विशेषता या एडवेंचरस क्या है, ये इंद्रियों को निग्रह करना या मन को नियंत्रण करना, तब उसको महाबाहु कहते हैं अर्जुन जैसे। मनो दुर्निग्रहम चलम, तो उसको कैसे किया जाता है, दो चीज बताते हैं भगवान, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो दो चीज करना चाहिए, क्या है, तो अभ्यास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अभ्यास क्या बोलते हैं, अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कह रहे, क्योंकि ऑलरेडी अर्जुन ने उसको क्या कर दिया है, उसको नकार दिया है, फिर से उसको क्या बताएंगे, तो अभी अष्टांग योग को नहीं बोल रहे यहाँ पर। अभ्यास हेनु तो मतलब, अभ्यास हेनु तो मतलब यहाँ पर भक्ति के बारे में बोलते हैं, विशेष करके श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणम क्रियेत भगवत्यद्या धन्मनेदादितुत्तमम। इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है, ऐसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा शिक्षण है, तो ये सबसे बड़ा अभ्यास है, ये समझ आ रहा है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना, तो प्रभुपाद जी विशेष करके यहाँ पर क्या लगे कह रहे, ये क्या है, नवविध भक्ति है। कौन कौन से है वे नवविध भक्ति बताइए, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना और पाद सेवन करना। पाद सेवन मतलब अपने पादों को भगवान की सेवा में उपयोग करना, कि मंदिर आना या कोई तीर्थ भगवान के धाम परिक्रमा करने के लिए उपयोग करना, ये पावों का उपयोग है, या भगवान का चरणों का सेवा करना, दोनों होते हैं। वंदनम, वंदनम, वंदनम मतलब प्रार्थनाएं करना, प्रार्थनाएं करना और दंडवत भी करना भगवान को, दोनों होते हैं, उसका भी दो अर्थ होते हैं। और अर्चनम, अर्चन करना, फिर उसके बाद में दास्यम, भगवान का दास बनना, सत्यम आत्मनिवेदन, उनके मित्र बनना, मित्र में भी दो होते हैं, मैत्री और विश्वास, एक वेल विशर होते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करते हैं और भगवान की रक्षा में विश्वास रखते हैं, और आत्मनिवेदन पूरी तरह से सब कुछ भगवान को, मन बुद्धि वाणी शरीर को भगवान को समर्पित कर देना, इसको आत्मनिवेदन के। तो उसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, श्रवण करना, आरंभ तो श्रवण से होता है, मन को कैसे नियंत्रण किया जाता है भगवान के बारे में श्रवण करके, उतना कठिन है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वायु रिव सुदुष्करम, वायु को भी नियंत्रण करने से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भक्ति मार्ग इसको आसान बना दे। तो भगवान के बारे में बैठ के सुनना चाहिए, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे खड़े होने की जरूरत नहीं है, नांग बंद करने के करके कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ के श्रवण करना है बस। उसको करने से क्या हो जाता है, तो अपने आप नियंत्रित हो जाता है। नियंत्रण होने का क्या अर्थ है, वो विषयों से, इंद्रिय विषयों से वो मन अलग हो जाता है या दूर चला जाता है, दूर तो चला जाता है। तो आगे भी भगवान वर्णन करें, प्रभुपाद जी या भगवान वर्णन करें मन की तपस्या में 17वें अध्याय से। और वैराग्य क्या क्या अर्थ होता है, तो ऐसे भक्ति करने से, नवविधा भक्ति करने से ही हमें अपने आप वैराग्य भी आ जाता है, विरक्ति, उसको विरक्ति कहते हैं प्रभुपाद जी। तो वो श्लोक है ना, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमान से, तो यथाश क्या बोलते श्लोक मास्टर, प्रपद्यमान से यथाश्नत स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद्ध पायोनुवासम। वो कहते हैं कि भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चेष त्रिक एक काल, जैसे भक्ति करने से क्या हो जाता है, तीन चीज होते हैं, जैसे हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं तो वो तीन चीज होते हैं, किसी को पता है क्या तीन चीज होते हैं जब अन्न ग्रहण करने से, सेटिस्फेक्शन और पुष्टि शक्ति और शुद्ध पायम वासम, मतलब भूख मिट जाता है। तो हर एक दाना हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा, हमें आनंद मिलता है, उसका रस आस्वादन करते हैं ना, खाने का व्यंजन का रस आस्वादन करते हैं। आज दोपहर में कौन सा रस का आनंद आस्वादन के सही लो, उसका अभी हमें अनुभव हो रहा है, अभी भी अनुभव हो रहा है, तो ना? उसको तुष्टि कहते हैं, उसको रस आस्वादन करते हैं। पुष्टि मतलब क्या बनता है, शक्ति मिलता है, डाइजेस्ट होकर हमें शक्ति मिलता है। शुद्ध पानोगासम मतलब जो भूख है मिट जाता है ना। वैसे ही भक्ति करने से तीन चीज क्या होते हैं, बताइए कौन कौन से तीन चीज होते हैं, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमान से यथाश्मत स्युस, यथाश्मत स्युस तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुगासम। बताइए क्या तीन चीज होते हैं भक्ति करने से, जैसे हमें अन्न खाने से आनंद मिलता है, भक्ति करने से भी आनंद मिलता है। इस श्लोक में वो क्या कहाँ बताएगा आनंद के बारे में, भक्ति परेशान भव, भक्ति क्योंकि भक्ति का स्वभाव ही आनंदमय होता है। तो पुष्टि मतलब परेशान भव, जब हमें साक्षात्कार ईश का अनुभव होता है तो हमें क्या हो जाता है, साक्षात्कार
वो साक्षात्कार होता है तो क्या हो जाता है, हमें पुष्टि मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है ना। ये भौतिक जगत दुख का स्थान है, खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। कभी हम लोग खेलते रहते हैं, कभी कटकट करते रहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। व्यक्ति जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ काम करता है तो सुनना चाहिए ना। तो हम क्या बोल रहे थे, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है, इसका हमें महसूस हो गया तो हम लोग सोचते हैं भगवान मुझे ये अनुभव करा रहे हैं, ये साक्षात्कार दिला रहे हैं, तो उससे हमें क्या हो जाता है, भक्ति में दृढ़ता मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। यस, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए करके। तो ऐसे साक्षात्कार होने से हमें प्रगति करने के लिए प्रेरणा मिलती है, या एक आध्यात्मिक शक्ति मिलता है, उत्साह मिलता है, तो उसको पुष्टि कहते हैं, नरिशमेंट होता है। साक्षात्कार नहीं है तो कभी नरिशमेंट नहीं होगा भक्ति में। तो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होना, वो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके करके उसका हमें भगवान का ब्रह्म स्पर्श संस्पर्श होना चाहिए, तभी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा या उत्साह या शक्ति मिलता है, नहीं तो शक्ति नहीं मिलता है। साक्षात्कार से शक्ति होता है भक्ति में, ठीक है, उसको परेशान अनुभव कहते हैं। और तीसरा चीज क्या होता है, विरक्ति, भौतिक जगत के चीजों के वस्तुओं से आसक्ति छूट जाती है। जब भूख मिट जाता है तो और खाने की कुछ इच्छा होता है क्या, नहीं। तो जब भक्ति में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो और इस भौतिक जगत के संसार के जो चीजें हैं उससे क्या लेना देना, उससे हमें कुछ आसक्ति नहीं होता, आकर्षण नहीं होता। धनम जनम सुंदरीम कविताओं से आसक्ति नहीं होता। तो ऐसे विरक्ति होते हैं, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति का अभ्यास करने से क्या हो जाता है, हम लोगों को मन को आसानी से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये भगवान ने बताया, अभ्यास येन तु कौन्तेय या वैराग्येन च गृह्यते। तो अगला श्लोक, असंशयात् असम्यात् असम्यतात्मनो योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु या तदा स्वाप्तुम् उपायतः। यहाँ पर बोलते हैं, जिसका मन उशंकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच समुचित उपाय करता है उसके सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान का मत। हम लोगों को क्यों कठिन होता है बताइए, क्यों भक्ति कठिन होता है या योगाभ्यास कठिन क्यों होता है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग क्यों कठिन होता है? क्योंकि मन ये विचलित है, उशंकल है। क्या शब्द उपयोग किया, उशंकल है मन, उसके कारण हमें ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे हम आरंभ में चर्चा किया, मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षये, वो अमृत बिंदु उपनिषद में करो, वो भी मन ही बंधन और कारण मुक्ति का कारण। आत्म साक्षात्कार के लिए वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब मन विचलित रहता है तो, उशृंखल रहता है तो। तो यही कारण है क्यों हम लोगों को कठिनाई आती है, कठिनाइयाँ आते हैं या कठिन हो जाता है ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग, क्योंकि मन क्या है, उशृंखल है, वही हमारा रोग है, समझ में आ रहे, वही हमारा समस्या है। तो लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद भगवान बता रहे उपायतः, उपायतः मतलब समुचित उपाय करने से क्या हम लोग सफल हो जाएंगे। भक्ति में तो क्या उपाय करेंगे हम लोग, हमारा हम लोगों का क्या है, भक्ति करना है, वही उपाय है। लेकिन वो गीत में बोलते हैं ना, वो गोपीनाथ गीत में क्या बोलते हैं, वो सभी मेरे लिए क्या उपाय है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं अनादि कर्म फले पड़ी जब भगवान में चले थारी बारे ना देखी पाए। ऐसे कह रहे हैं। एक्चुअली वो बोल रहे कि कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते ही वो उपाय समझा रहे हैं। शरणागति का एक श्लोक का वो गीत है, वो शरणागति ही उपाय है भगवान का, है ना। तो ऐसे उपाय नहीं है, बोलते बोलते क्या बोल रहे, उपाय बोल रहे, मतलब वो उसमें विशेष करके अपने आप को कैसे तुच्छ मानना, बहुत ही निस्सहाय मानना, वो शरणागति का एक अंग है ना। कौन सा अंग है वो बताइए, छह अंगों में कौन सा अंग है अपने आप को निस्सहाय मानना? शरणागति का छह अंग कौन से होते, कौन बताएंगे शरणागति का छह अंग? अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। निस्सहाय भाव क्या है? कार्पण्य, कार्पण्य ओ वही उपाय है। निस्सहाय जब विशेष करके हम अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे ओर ज्यादा आकृष्ट करते हैं, तो यही सही उपाय है। ऐसे सही उपाय से लेने से तो हम निश्चित ही यशस्वी हो जाएंगे मन को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन ये लोग, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, ये लोग योगाभ्यास में लगे हैं और उसके साथ साथ इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अनियंत्रित मन के द्वारा इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। वो कैसा है, अग्नि को जलाते जला रहे हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं, तो कभी अग्नि बढ़ेगा नहीं, है ना। सुबह भी हम बता रहे थे कि इसलिए हम लोग चार नियम को पालन करते हैं, इंद्र तृप्ति में नहीं लगते हैं और भगवान की भक्ति सेवा करते हैं। तो चार नियम को पालन नहीं करना या टेलीविजन देखने से क्या हो जाता है, मन और अनियंत्रित हो जाता है और दूषित हो। हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे और उसके साथ साथ ऐसे चीज कर रहे, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके मन शुद्ध हो जाता है और ऐसे इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग या ऐसे पाप कर्मों में लग के या सिनेमा टेलीविजन देखने से, ऐसे म्यूजिक सुनने से क्या हो जाता है, फिर से मन दूषित हो जाता है, तो वो कुछ फायदा नहीं होगा, वो सही उपाय नहीं। सही उपाय क्या है, हमें ऐसे चार नियमों को पालन करना चाहिए और भगवान को शरणागत होने, भक्ति सेवा में लगना, वही सही उपाय, उसको लेने से हम लोग आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभुपाद जी, शो ऑफ योगा इज योगा, उसको खंडन कर रहे हैं, बहुत ही आकर्षक लग सकता है, लेकिन योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, लाभप्रद नहीं, लुक्रेटिव मतलब क्या है, आकर्षक। तो किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, ये सब व्यर्थ है, ऐसे बोल रहे, ठीक है। अर्जुन और अर्जुन आगे ये कुछ और चीज बताते हैं। अयति श्रद्धयोपे तो योग चलित मानस अप्राप्य योग सिद्धिम खाम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगा, क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसने विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवद्गीता में आत्म साक्षात्कार या योग का मार्ग का वर्णन है, तो कि उसका अर्थ है कि हमें ये भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर से भिन्न है, तो और आत्मा क्या है, वो सच्चिदानंद है, वो हमें जानना चाहिए। तो ये शरीर तथा मन दोनों से परे है, आत्म साक्षात्कार की खोज का ज्ञान द्वारा की जाती है, इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। तो ऐसे कहते हैं, इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिसके द्वारा टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। ऐसे कहते हैं, उसके लिए अलग अलग विधान बताया गया है ना, वो अलग अलग विधानों को पालन करने से ऐसे हम लोग सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास में भी मोक्ष की महती आशा है। तो प्रभुपाद जी अभी दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। कौन सा श्लोक दूसरे अध्याय में? नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्त्रायते महतो भया। वहाँ पर जो धर्म शब्द आता है वो बुद्धि योग है, उसमें जो लगते हैं वो उसमें कोई लॉस नहीं है। प्रभुपाद जी अभी उत्तर दे रहे हैं इसका। अर्जुन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरा नहीं करता है अपने भौतिकता के कारण, उसको त्याग कर देता है वो मार्ग को, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को, उसका गति क्या हो जाएगा, ऐसे पूछ रहे अर्जुन। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या लॉस है, भगवान ने ऑलरेडी बता दिया है उसको, इसमें कोई हानि नहीं है और इसका कोई गठन नहीं होता है, ऐसे शाश्वत रहता है ये, और सबसे बड़ा दुख से हमें मुक्त कराता है, ऐसे पहले ही भगवान ने बता दिया है। तो इसलिए इसको बहुत ही श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी वश के कारण उसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं तो उसमें कुछ हानि नहीं है, ऐसे वो कह रहे हैं। योग छलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलित विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है करते हैं। तो अभी अगले श्लोक में वो और भी इसके बारे में विस्तार से पूछेंगे। कच्छिन्नो भयम विभ्रष्ट छिन्न छिन्नाभ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुडो ब्रह्मणापति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों से या सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल के भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हो, जैसे आकाश में ऐसा कुछ क्रिया होता है तो कभी कभी हवा के कारण क्या हो जाता है, बड़े बादल से एक छोटा बादल अलग हो जाता है, तो अलग हो के वो दूसरे बादल में भी बड़ा बादल में मिलता नहीं है, वो हवा उसको बह के लेके चले जाती है। वैसे ही हम लोग भौतिक जीवन को त्याग कर दिया, फिर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर या योग के पथ आत्म साक्षात्कार के पथ को स्वीकार किया, इसमें भी पूरा परिपूर्णता प्राप्त नहीं किया तो कैसे होगा वो? जैसे बादल को कोई स्थान नहीं रहता है, हम भौतिक जगत में भी अपना स्थान नहीं बनाएं और आध्यात्मिक जीवन में भी अपना स्थान पहचान नहीं बनाएं तो क्या स्थिति हो जाएगा, ऐसे अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद जी उत्तर यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो व्यक्ति भौतिक सुख को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा और आध्यात्मिक जीव जो वो और उत्तम सुख है उसको, जो जिसका हम लोगों ने चर्चा किया ना, भगवान ने भी वर्णन किया, योग को परिपूर्णता करने के बाद जो सुख का अनुभूति होता है वो भी उसको अनुभव नहीं हुआ, तो उसके छिन्न भिन्न बादल के समान है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी वो ब्रह्मणापति शब्द का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मणापति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर के अभिन्न अंश जाने लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होते हैं। वो साक्षात्कार ऐसे तीन रूप में होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लगते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो और और अर्जुन कहते हैं ये तन्मे संशयम कृष्ण। ये तन्मे संशयम कृष्ण चेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत नाह्य उपपद्यते। तो वो कहते हैं हे कृष्ण यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सकते हैं। तो वो अशेषतः मतलब पूर्णतः कोई शेष नहीं रहना चाहिए संदेह में, थोड़ा थोड़ा भी संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है, वो हमारा पतन का कारण बन जाता है। तो इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, पूर्णतः आप संशय से मुक्त कीजिए। और दूसरा चीज त्वदन्य आपको छोड़कर संशयस्य चेता न क्या उपपद्यते, और कोई नहीं है इसको इस संशय को मुक्त, ऐसे दुनिया में ऐसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं है, कोई विज्ञानी नहीं है इसको मुझे इस संशय से मुक्त कर सकते हैं। बड़े बड़े वेदों के अनुयायी जो है, अलग अलग दर्शन का अनुयायी है या अलग अलग दर्शन को या मत को उन्होंने स्थापित किया है, वो लोग भी मुझे इस संशय से मुक्त नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं अर्जुन कि भगवान कृष्ण ज्ञान के ऊपर सर्वोच्च अधिकारी है, बोलता है ये परम सत्य का एक परिभाषा है, वो ज्ञान का सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए। वही परम सत्य कौन है, भगवान कृष्ण, जैसे यहाँ पर अर्जुन बता रहे। तो इसको अर्जुन ने चौथे अध्याय के आरंभ में भी बताया था, किसी को पता है, याद है, वो जब भगवान ने बताया मैं इस ज्ञान को विवस्वान को भी दिया था, तब अर्जुन कहते हैं अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वता किम एतद् विजानी हम तुम आदो प्रोक्तवाणी थी। वो कहते हैं कि कैसे मैं जान सकता हूँ कि आपने इसको पहले बताया था। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भी वो परम सर्वोच्च अधिकारी को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं बार बार, ऐसे प्रभुपाद अलग अलग जगह पर वर्णन करेंगे परम सत्य के परिभाषा, अलग अलग चीज, या दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण क्यों परम सत्य है, इसको अलग अलग जगह पर वर्णन करेंगे। उसमें एक जो विषय है भगवान कृष्ण सभी ज्ञान के ऊपर परम अधिकारी है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे भी वर्णन करेंगे कि भारत में वेदों के जो अनुयायी हैं दो प्रकार, दो स्कूल है, पर्सनलिस्ट सकारवादी और निराकारवादी, दोनों क्या करते हैं भगवान कृष्ण को अधिकारी स्वीकार करते हैं, है ना। शंकराचार्य भी उनके अधिकारी को अधिकार को स्वीकार किया, भगवान कृष्ण के अधिकार को कोई अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए भगवद्गीता में जो प्रस्तुत किया है वह सर्वोच्च ज्ञान है, इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं, ठीक है। श्री भगवान उवाच पात नैवेह नामोत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत्कृषित दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा हे प्रताप पुत्र कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। सो अर्जुन ने पूछा था वो 48वां श्लोक में देखे वो अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठो मतलब कोई उसका स्थान नहीं होता है, बिना कोई पद के व्यक्ति उसके कोई स्थान नहीं होता है, ऐसे बोलते अर्जुन। लेकिन भगवान ये उसको उसके उत्तर में क्या बोल रहे हैं, उसका कभी कोई दुस्थिति नहीं होता है, उसको कोई इस लोक में दूसरे लोक में हमेशा क्या होगा, उसको सही स्थान प्राप्त होगा, ऐसे भगवान बता रहे हैं। पार्थ नैवेह नामूत्र, अमूत्र इस न इव मतलब इस जीवन में, अमूत्र मतलब अगले जीवन में, विनाशस्तस्य विद्यते कभी विनाश नहीं होता है, नहीं कल्याण कृत कृष्य दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण कृत कल्याण कार्यों में जो लगा हुआ है, शुभ कार्यों में लगा हुआ है। भक्ति क्या है? वो सर्वोच्च शुभदा है। ऐसे कार्य में लगा हुआ है तो वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। ऐसे यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं। आई थिंक वी शुड स्टॉप ना, यहाँ पर 7:30 हो गया ना, तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? एक दो प्रश्न है तो ले सकते। तो ये उत्तर जो है भगवान के उत्तर को कल हम लोग चर्चा करेंगे। कंटिन्यू करेंगे ना, सबके सामने बता दिया है, यहीं पर रख देंगे आपको, है ना।
किसी कारण बस अगर हम बीच में बहुत ही जगह में रोड पर फिर से इतने तो क्यों लगेंगे वहाँ के लोग, इतने जगह लगेंगे, उसके बाद उससे पाप कर्म होगा, तो जो पाप कर्म करेंगे हम लोग, तो उस पाप कर्मों से ये जो प्रगति हुई ये कहीं भी असर मतलब इफेक्ट नहीं होता इसमें?
नहीं होता। वैसे भगवान ने बताया ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उसमें कोई नाश नहीं होता है। लेकिन आपको लंबा समय होगा, लंबा समय लगेगा। और यहाँ पर दो उत्तर देते हैं भगवान, क्या होगा, हम थोड़ा ही प्रगति करके छोड़ दिया तो क्या होगा, और ज़्यादा प्रगति करके छोड़ दिया तो क्या होगा, दोनों वर्णन। लेकिन नाश नहीं होता है कभी कभी, दुर्गति तात गच्छति ऐसे, तात तात शब्द हम लोग उसको कल चर्चा करेंगे, तात शब्द का क्या अर्थ होता है। और क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आशा किया था इसको खत्म पूरा करने का, सुबह ज़्यादा लेना चाहिए लेकिन डिटेल अरे अच्छा है ना।